पूरी सूरत में अल्लाह ने फर्ज चीजें हमें बताई। अब इताते रसूल का हुसन बताया गया कि जब तक अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानोगे तब तक तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। तो दुआ करते हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद हमें अल्लाह के रसूल के तरीकों पे चलने की तौफीक हो। ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, हमने इताअत कबूल की, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह इताअत से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज़ मोमिन नहीं। जब इनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल इनके आपस के मुकदमे का फैसला करे, तो इनमें से एक फरीक कतरा जाता है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं रसूल को। क्यों? रसूल की बात सुनी, सुन्नत मसला पता लग गया तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। ये एटीट्यूड है उनका। अलबत्ता अगर हक इनकी मवाफकत में हो तो रसूल के पास बड़े इताद कैश बनकर आ जाते हैं। यानी कोई हदीस अपने हक में मिलती तो हो, सबको जाके सुनाएंगे। देखो अल्लाह के नबी की यह हदीस है कि इनके दिलों को मुनाफकत का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेगा। तीन डाउट्स हैं इसमें, हाईलाइट करें। आज भी मुसलमानों के ये डाउट्स हैं, कितनी अल्लाह और उसका रसूल दीन को सख्त कर देगा, या फिर शक है, या फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इन तरीकों पे चलेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो इंजॉइंग नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं असल बात यह कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। ईमान लाने वालों का काम क्या है? या 51 को हाईलाइट करें और इसके नीचे मोमिनीन के नीचे अपना नाम लिख लें और दुआ करें कि अल्लाह मेरा ये कॉल बन जाए। क्या इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, सिवाय इसके नहीं है कॉल ईमान वालों का कि जब कभी उनको पुकारा जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल इनके मुकदमे का फैसला करें, तो वो कहते हैं समेना व अतौना, हमने सुना और हम मानेंगे। दुआ करिए अल्लाह हमें भी इसी की तौफीक दे। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं और कामयाब वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें और अल्लाह से डरें और इसकी नाफरमानी से बचें। इसके बरक्स मुनाफिकों की सिफात वक्समु बिल्लाहि जख्दा ईमानिहिम, ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। यानी आप बात करके तो देखें, आप कह के देखें, हम तो आपके लिए जान भी दे देंगे। इनसे कहो कस्में ना खाओ, तुम्हारी इताअत का हाल मालूम है, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। कहो अल्लाह के मती बनो, रसूल के ताबे फरमान बन के रहो। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम पर जिस फर्ज का बोझ डाला गया इसके जिम्मेदार तुम हो। हाईलाइट करें, हम जल्दी में गौर करना नहीं छोड़ेंगे इस आयत पे। अल्लाह कह रहे रसूल को जो बोझ दिया था, काम दिया था, वो कर गए माशाल्लाह, शहादत हक की गवाहियां दे गए। ओ उम्मत मुस्लिमा, तुम तैयार हो अल्लाह को जवाब देने के लिए कि जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी उसको अदा किया कि नहीं? हाँ वही तो थी यू तहतु, तो अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पालोगे, नहीं करते तो वमाल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, तो रसूल के जिम्मे साफ साफ हुक्म पहुंचाने के सिवा कुछ भी नहीं। अब आयत 55, मेरे और आपके खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल की जमानत। बहुत खूबसूरत आयत है। इस आयत की रोशनी में पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा जब सही मुसलमान बन जाएगी उसका मुस्तकबिल कितना रोशन है, क्योंकि अल्लाह ने वादे का लफ्ज इस्तेमाल किया। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करें कि वो इनको इसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका, और उनके लिए उनके दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम करेगा जिसे अल्लाह ने इनके हक में पसंद किया, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। हाईलाइट करें, आज है मुसलमान स्केर्ड। अल्लाह कहता है तुम ईमान के तकाजे पूरे करो, तुम्हारा सब स्केरीनेस खत्म, तुम्हारा रूब आ जाएगा बजाय इसके कि तुम मरूब हो। और अल्लाह वो वक्त जल्दी ला कि अब मुसलमानों के दिलों से खौफ निकल जाए, बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। नुस्खा भी मिल गया। और जो इसके बाद कुफर करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। नमाज कायम करो, जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पे रहम किया जाएगा। जो लोग कुफर करें इनके मतलब इस गलत फहमी में ना रहो कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे, इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, पीछे हुक्म गुजर चुका कि किस तरह घरों में रहते हुए एक दूसरे से इजाजत लो, अब बिल्कुल क्लोज सर्किट में बच्चे माँ बाप के कमरे में किस वक्त आ सकते हैं किस वक्त नहीं आ सकते, इजाजत ली जाएगी नहीं ली जाएगी, यही बात अब आगे सिखाई जा रही है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अकल की हद तक नहीं पहुंचे तीन औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। कौन से? हाईलाइट कर लीजिए, सुबह की नमाज से पहले। आमतौर पर प्राइवेसी का वक्त होता है, इंसान अपने आप को पाक कर रहा होता है, नमाज की तैयारी में होता है, और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी घर में कैलूला करते हो, ऊपर के कपड़े चादरें या बाएं बाज मर्ज कमीज उतार देते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर घर में कमरे में कोई आ जाए तो एम्बेरसमेंट होगी। और तीसरा वक्त ईशा की नमाज के बाद, ये तीन वक्त हैं तुम्हारे लिए पर्दे के, इसके बाद वो बिला इजाजत आए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ना उन पर। तो बच्चों को शुरू से ये ट्रेन कीजिए, छोटे बच्चों को कभी इजाजत ना दें कि बगैर नौक की आपके कमरे में आ जाए, चाहे वो मस्जिदों के डोर हो। इतनी आदत हो जाए कि जहां डोर बंद है नॉक करके इजाजत लेकर फिर अंदर आए। फरमाए तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने इरशादात को वाजे करता है, वालीम है और हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाए तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तो अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम और हकीम है। अब बूढ़ी औरतों की बात है, हम में से तो कोई बूढ़ा नहीं है ना माशाल्लाह। फरमाया वल कवायदु मिनन निसाई अल्लाती ला यरजून निकाहा, और वो औरतें जो जवानी से गुजरी बैठी हो, निकाह की उम्मीदवार ना हो, अगर वो अपनी चादरें उतार कर रख दें तो इन पर कोई गुनाह नहीं। कौन उतारेगी बुढ़ापे में जो जवानी में लेती थी? आप देखिए साइमल्टेनियसली इसमें पता चल रहा है कि जवानी में लो, और ये कौन सी चादर है जिसका जिक्र हम सूरत अलअहज़ाब में पढ़ेंगे, जिलबाब, और उसी को आप डिफरेंट नामों से सोचते हैं। तो कहा अगर बुढ़ापे में संभाल नहीं सक रही, कंधों में दर्द है, अब कमजोरियां आ गई, कशिश नहीं है ना उनमें ना किसी में, तो कोई हर्ज नहीं, वो मोटी चादरें उतार दे, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ये ना हो कि अब मैचिंग कर तो रही है बस ऑफ व्हाइट कलर की कर रही है, अब जोड़े तो बन रहे अच्छे से अच्छे लेकिन व्हाइट कलर के काम वाले जोड़े बन रहे हैं। अभी बेचारी से सुरमा लग नहीं रहा लेकिन वो लगाने की कोशिशों में धंधासा है कुछ भी, अब तक अपने ब्यूटी कॉन्शियस छुपना चाहिए। अब जिसको देख जी अब्बा उतार दे तो कोई हरज की बात नहीं, यदि जो औरत आराइश से बेनियाज है वो ठीक है, और जो बेटियां खुद अपनी जो बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों को मशवरे दें कि दुपट्टे उतार दो और ये कर लो और वो कर लो, फिर उसको इससे एग्जाम किया गया। हाँ मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कहा ताहम वो भी हयादारी ही बरते तो इनके हक में बेहतर है। एक आलिम थे तो उन्होंने देखे बूढ़ी औरत और खूब मोटे वो जो पहले दौर की चादरें दुपट्टे होते थे ना बुरके सफेद वो पहनी हुई थी, तो उन्होंने उनको देखकर ये आयत पढ़ी कि अम्मा आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, केवल कवायद मिन النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, इतनी आयत पढ़ी कि देखे अल्लाह ने इजाजत जो दी है तो आप क्यों इतना पहन रही। तो कहने लगी बेटा तुमने आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, वहीं यस्ताफिफ़न खैरुल्लहुन्न, बूढ़ी औरत भी बच्चे बेपर्दगी से तो ये भी उनके हक में बेहतर है। तो ये तो फिर अपने तकवे की बात होगी ना। फिर आगे खाने पीने की कुछ बातें, लैसा अलल आमा हरज अलल आरजी हरज, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से और अपनी खालाओं के घरों से। इन सब के ऊपर एक एक्टिविटी लिखें कि सारे रिश्ते अरबी में याद करें, ठीक है? मामू को क्या कहते हैं, फूफो को क्या कहते हैं, खालक, और अल्लाह पे प्यार आता है कि आप सब के घर से खा सकते हैं, वो तो खुद खुश होते हैं आप उनके घरों से खाएं, अल्लाह सुब्हान तआला भी खुश होता है जब आप अपने इन रिश्तों के घरों से खाते हैं, या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारी सुपुर्दगी में हो या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम सब मिलकर खाओ या अलग अलग, कौन सब मिलकर, लोगों ने इसे आपको कहता है कि सेग्रीगेशन का रद्द कर दिया, देखो कुरान कहते सब मिलकर खाओ, यानी सारी औरतें मर्द मिलकर एक ही जगह खाओ, है ना मत मरी भी उल्टी बात, यानी सब मिलकर खाओ से मुराद क्या है कि तुम मिलकर खाओ। पहले दौर में क्या होता था कि जो बेचारे हैंडीकैप्ड लोग होते थे वो दूसरों के साथ नहीं खाते थे, कहते थे हम अंधे हैं पता नहीं हम ज्यादा खा लेंगे दूसरे का हक मार देंगे, कोई कुछ कोई कैसे कहता, अल्लाह कहते नहीं सब खाओ, मिलके भी खाओ, कभी इकट्ठे खाओ कभी अलग खाओ, अलबत्त जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो, दुआ खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई है बड़ी बबरकत और पाकीजा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम सब मजबूत से काम लो। बार बार अल्लाह का यही मशवरा है कि अक्ल से काम लो, समझ लो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम क्या करते हो। आखिर में सच्चे मोमिनों की तारीफ कर दी, कौन होते हैं मोमिन, और अल्लाह मुझे आपको बना ले, और इसमें इस समय जिंदगी है लिख लें, इसका थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि बहुत अहम आयत है। और जो लोग कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, कहीं वॉलंटियर करते हैं, वो इस आयत की तफसीर जरूर सुने। कि जब दीन के कामों पे हम मिलें या जुदा हों तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिन। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी इज्तमाही काम के मौके पर रसूल के साथ हो तो इसे इजाजत लिए बगैर ना जाओ। नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि इन्फॉर्म करके जो हम जा रहे हैं खुदा हाफिज, नहीं, यू नीड टू टेक द परमिशन। किसी को प्रोग्राम इंचार्ज बनाया, आपने उससे इजाजत लिए बगैर चले गए तो आप इस आयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, बस जब वो अपने किसी काम से इजाजत मांगे जिसे तुम चाहो इजाजत दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआ मगफरत किया करो, अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझो, यानी रसूल की इज्जत करो। ऐसे ही उनके साथ बात ना करो कैजुअल मूड में जैसे दूसरों से करते हो, और रसूल तुमको बुलाएं तो तुम उनकी बात सुनो। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए, अल्लाह हम बचाए। इस आयत को हाईलाइट किया आपने, कितनी जबरदस्त आयत है। सुन्नतों से मुंह फेरने वालों को अल्लाह अजाब से डरा रहा है। और आखिरी आयत, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, खबरदार रहो आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो, अल्लाह इसको जानता है। 3 सेकंड गौर करें, तुम जिस रविश पर, पूरी सूरत के अहकाम को जहन में लाए, जिस बात पे, जिस हद तक जो अमल कर रहे हो अल्लाह को उसकी खबर है। याद रखो, यौम युरजाउन इलैहि फयुनब्बियुहुम बिमा अमिलू, जिस रोज उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो इनको बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का इल्म रखता है। तो माशरे को जज नहीं बनाओ, अल्लाह को जज बनाओ, वो तुम्हारे कामों को जानता है। तो ये थी सूरत नूर, जिसमें हकीकत में हमारे लिए बहुत कुछ है। पिछली सूरत नूर है तो अगली सूरत फुरकान है, दोनों मिलती जुलती सूरतें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।